कृष्ण कथा एक ऐसी चीज है जिसको सुनने से भक्त कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण कथा अमृत है और अमृत का पान करने से समय समय पर नवीन शक्ति मिलती है, थकावट महसूस नहीं होती है और हमारे सारे हृदय के अनर्थों को नष्ट करती है। कृष्ण कथा के गुण ऐसे हैं क्योंकि यह दिव्य है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। हर एक व्यक्ति यहां इस जगत में भौतिक पीड़ाओं से तड़प रहा है, लेकिन अज्ञानवश लोगों को यह नहीं पता कि उनके दुखों का निवारण कैसे किया जाए। और भागवत में बताया गया है कि केवल अगर हम कृष्ण के बारे में सुने तो न केवल हमारे दुखों का निवारण होगा बल्कि हमें श्रेष्ठ श्रेणी के दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। इस दिव्य आनंद की अनुभूति उच्चतम स्तर पर वृंदावन की गोपियां अनुभव कर रही थी, जबकि उन्होंने भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी। और इसलिए इस श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 21वां अध्याय, इस अध्याय के श्लोक उन्होंने कहे वेणु गीत। कल के श्लोक में हम सुन रहे थे कि कैसे वनचारी स्त्रियां पुलिंदी जो कि आदिवासी हैं वो कितने भाग्यशाली थे कि वो हमेशा कृष्ण के पीछे पीछे जा सकते थे। जब कृष्ण अपने गायों के साथ, ग्वाल बाल मित्रों के साथ इधर उधर भ्रमण करते वन में, तो पुलिंदी स्त्रियां वो भी वन में रहती, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे जाकर उनका दर्शन कर सकते, उनके लीलाओं को देख सकते, उनके बांसुरी की आवाज सुन सकते। तो गोपियां इस वेणु गीत के 17वें श्लोक में उनके सौभाग्य का वर्णन करती हैं कि ये पुलिंदी स्त्रियां इतने भाग्यशाली हैं। और उन्होंने जब उस कुमकुम को उस घास के ऊपर देखा, अपने ऊपर उसका लेप लगाया और उनके विरह की भावना थोड़ी बहुत शांत हो गई। अब हम देख चुके हैं इस वेणु गीत के अध्याय में कि गोपियां किसी एक भक्त या एक भक्त के एक वर्ग के ऊपर अपना मन केंद्रित करके ज्यादातर टिक नहीं सकती हैं। हर एक पशु पक्षी प्राणी व्यक्ति को वो महान भक्त समझती हैं ब्रज में, जो कि सही है, और अपने आप को निम्न श्रेणी का समझते हैं, दुर्भाग्यशाली समझते हैं और सोचते हैं कि ये अन्य भक्त जो हैं कितने उच्चतम स्तर पर स्थित हैं। कभी मोर को देखती हैं, सोचते हैं कि ये सबसे अच्छे भक्त हैं, अगले जन्म में हमें मोर बनना चाहिए। हिरण को देखती हैं, कहते हैं हिरण देखो कृष्ण की कितनी अच्छी तरह से सेवा कर रही है, हमको हिरण बनना चाहिए अगले जन्म में। इस प्रकार से एक से दूसरे श्रेणी में, वर्ग में वो घूमते रहती, उनके चर्चा का विषय भी इसी तरह बदलते रहता है। और जहां भी उनका मन केंद्रित होता है ब्रज में, उस वर्ग को, उस व्यक्ति को, पशु को, पक्षी को वो श्रेष्ठ समझते हैं। तो 17वें श्लोक में ऐसे वो पुलिंदियों के बारे में सोचते हैं और ऐसे सोचते सोचते चर्चा करते हैं कि देखो भगवान के भक्त कितने महान होते हैं, इनका आश्रय अवश्य हमें लेना चाहिए, ऐसा लेने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और ये चर्चा करते करते उनका ध्यान तो सब जगह व्रज में घूम रहा है कृष्ण के लिए, फिर अचानक गोवर्धन के ऊपर उनकी दृष्टि केंद्रित होती है। फिर सोचते हाँ देखो गोवर्धन कितना महान भक्त है, और फिर चर्चा चलती है गोवर्धन के ऊपर। गोवर्धन पर्वत के बिना ब्रज क्या है? आप में से जो ब्रज में गए हैं अवश्य आप सबने गोवर्धन का दर्शन किया होगा, अगर आपने परिक्रमा नहीं किया होगा तो कम से कम दर्शन तो किया होगा। तो गोवर्धन का स्थान कृष्ण भक्ति में, ब्रज में, कृष्ण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोवर्धन न केवल स्वयं भगवान के एक अवतार माने जाते हैं, लेकिन इससे अधिक भक्तों को इसलिए प्रिय हैं कि वो श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं और अनेक तरीकों से भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा करते हैं। तो इस 18वें श्लोक में गोपियां इस वेणु गीत में गोवर्धन की स्तुति करते हैं। तो आइए सुनते हैं कि क्या स्तुति है उनकी। ताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलैः हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलैः। वाद श्रील प्रभुपाद द्वारा समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गवों, बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। गोपियां आपस में अलग अलग अपने छोटे छोटे दलों में, गणों में एकत्र होती हैं और इस बार विचार कर रही हैं, हमने तो सुना है गार्गी से, गार्गी मतलब गर्ग मुनि की पुत्री, कि गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ भक्त है, तो चलो हम वहां पर जाते हैं, वहां जाकर मानसी गंगा में स्नान करेंगे और वहां पर जो देव हैं हरिदेव, वहां के अधिष्ठाता देव, हरिदेव मतलब कृष्ण, उनका दर्शन करते हैं। वहां जाने से, मानसी गंगा में स्नान करने के लिए जाने से अवश्य हमारे बुजुर्गों को कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि गोपियां जब भी बाहर जाना चाहती थी कृष्ण से मिलने के लिए तो बुजुर्ग हमेशा रोका करते थे, तो कोई ना कोई बहाना बनाकर वो निकल जाते थे। तो इस बार वो सोच रही हैं अवश्य गोवर्धन जाने के लिए तो कोई किसी का कोई विरोध नहीं होगा। तो ये गोवर्धन कितना भाग्यशाली है, ये पुलिंदी स्त्रियां, इनको तो पीछे पीछे जाना पड़ता है कृष्ण के और अन्य ग्वाल बालों के, परंतु गोवर्धन, कृष्ण अपने उनके गौवे और ग्वाल बालों को लेकर गोवर्धन के पास आते हैं। गोवर्धन के इधर उधर, ऊपर नीचे, बगल में घूमते रहते हैं, कई लीलाएं करते हैं। इस प्रकार से गोवर्धन का भाग्य कितना है। तो गोवर्धन को देखकर, गोवर्धन के बारे में सोचकर बहुत प्रसन्न होती हैं, साथ साथ उनको दुख भी होता है, इसलिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं हंत। ये हंत शब्द क्या है, अमरकोश में, अमरकोश जो कि मूल संस्कृत शब्द कोश है, उसमें कहा गया है हंत हर्षेनुकंपायाम वाक्यारंभ विषादयोः, कि हंत शब्द कभी कभी वाक्य के आरंभ में प्रयोग किया जाता है और कभी कभी इसका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे ही वाक्य के शुरुआत में, जैसे ओहो ओ कहते हैं, और कभी कभी हर्ष, अनुकंपा, विषाद मतलब आनंद में, कृपा एक कार्पण्य के स्थिति में, और कभी कभी दुख में भी, खेद में, विषाद, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो गोपियां बड़ी खुश हैं कि देखो गोवर्धन कितने अच्छे भक्त हैं। भक्त के ये गुण होते हैं कि दूसरे अच्छे भक्तों को देखकर प्रसन्न होते हैं। बल्कि अगर कोई वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखकर प्रसन्न न हो तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि पुराणों में बताया गया है कि ये एक प्रकार का अपराध भी है। अगर दूसरे भक्त को देखकर हमारे मन में कोई गलत विचार आए या ऐसे कोई विचार आए, द्वेष भावना उत्पन्न हो जाए, या हम सोचे कि ये भक्त यहाँ क्यों आया, तो ये अच्छा नहीं है हमारे भक्ति के लिए। भक्तों को देखकर हृदय से प्रसन्न होना चाहिए। और अगर अन्य भक्त बहुत अच्छे हैं और भक्ति में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए, जैसे गोपियों को हो रहा है गोवर्धन के बारे में सोचकर, गोवर्धन को देखकर। तो हंत कहती है कि देखो कितने अच्छे भक्त हैं ये गोवर्धन, आनंद की भावना की अनुभूति कर रही हैं, साथ साथ में उनको दुख भी हो रहा है। किस बात का दुख हो रहा है? क्योंकि यह हंत शब्द जो है दुख के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में कई बार ऐसे श्लोक आते हैं, उदाहरणार्थ चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे और विशेष करके उनके अंत लीला में, तो भगवान कृष्ण के प्रति तीव्र विरह की भावना को व्यक्त करते थे। जब पहले संन्यास चैतन्य महाप्रभु ने लिया तो 6 साल 24 से 30 की उम्र तक उन्होंने तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया, फिर 30 साल की उम्र से वो जगन्नाथपुरी में रहे और फिर कहीं गए नहीं उस स्थान को छोड़कर, और फिर संकीर्तन करते रहे। और विशेष करके आखिर के सालों में, अंत लीला में, इन 18 सालों में उन्होंने कृष्ण के प्रति विरह की भावना होना ये क्या चीज है ये सबको दिखाया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन भावों का वर्णन बड़े विस्तार में चैतन्य चरितामृत में करते हैं। तो ऐसे जब भाव में चैतन्य महाप्रभु हुआ करते थे तो कभी कभी कई श्लोक बोला करते थे अनेक वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों से, जैसे कि चंडीदास, विद्यापति, बिल्वा मंगल ठाकुर, जयदेव गोस्वामी, विशेष करके इन 4 कवियों के श्लोक बोला करते थे, क्योंकि इन 4 कवियों के श्लोक जो हैं रस से भरे हुए हैं। उनमें से कभी कभी एक श्लोक बोला करते थे जो कि बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा रचित है कृष्ण करणामृत में, यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, भक्तों को बहुत प्रिय है। अमून्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोकनमन्तरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हाहंत हाहंत कथम नयामि। कृष्ण करणामृत में बिल्वा मंगल कहते हैं कि हे अनाथ बंधो, हे अनाथों के बंधु, करुणा एक सिंधु, करुणा के सागर, करुणा के सिंधु, अमून्य धन्यानि दिनांतराणि, ये जो अशुभ दिन हैं जबकि मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, कथम नया में कैसे इसको बिताऊंगा मैं, हरे त्वद आलोकनम अंतरेण, जब मुझे आपका दर्शन नहीं हो पा रहा है तो वो दिन अशुभ है, तो ऐसे अशुभ दिनों को मैं कैसे काटूं, कथम नया में, ये बड़ी समस्या है मेरे लिए, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर शोक कर रहे हैं, हा हंत कि कितने खेद की बात, दुख की बात है कि मेरे लिए ये दिन बहुत भारी होते जा रहे हैं क्योंकि आपका दर्शन नहीं हो रहा है। तो भक्ति में इस भाव से शोक व्यक्त किया जाता है हंत शब्द से। जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से चर्चा कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, उन्होंने और एक भाव में एक और श्लोक कहा जो भक्तों के लिए भी वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य परम परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणाम अथ योषिताम च हाहंत हंत विषभक्षण तोप्य साधु।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निष्किंचनस्य मतलब निष्किंचन के लिए, निष्किंचन कौन होता है? जिसने सारे भौतिक भावनाओं को योजना बनाने की प्रवृत्तियों को त्याग दिया है। और भगवत भक्ति उन्मुखस्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है। जो अभक्त होते हैं वो भगवान और भगवान की भक्ति से विमुख होते हैं, लेकिन जो उन्मुख होना चाहते हैं, ज्यादा तल्लीन होना चाहते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में, जो निष्किंचन हैं उनके लिए, और खास करके जो पारम परम जिगमिशोर, पारम मतलब भवसागर से पारम, इस भव सिंधु के उस पार जो कि बहुत दूर है वो पार, जिगमिशोर जो पहुंचना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए संदर्शनम दर्शन करना, किसी भौतिक दृष्टि से किन चीजों को दर्शन करना, विषयिणाम अथा योषिताम च। विषयिणाम मतलब जो इंद्रिय भोग में बहुत लिप्त हैं, विषय मतलब इंद्रियों के विषय, तन्मात्रा रूप गंध स्वाद इत्यादि, जिनके मन में जीवन का उद्देश्य केवल इस संसार का भोग करना है, इनको विषयिणाम कहते हैं। अथा योषिताम, योषिताम मतलब स्त्रियां, मतलब जो व्यक्ति ऐसे भोग की वृत्ति से स्त्रियों को देखता है, या तो फिर जो भोगी व्यक्तियों का संग करता है, अगर ऐसे लोगों के बारे में हम सोचेंगे, उनका दर्शन भी करेंगे, तो क्या होता है? विष भक्षणतः अपि असाधु, विष का भक्षण करने से भी ज्यादा खराब है। इसलिए हा हंत हंत, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है। अगर कोई व्यक्ति जो भजन करना चाहता है, भक्ति में बढ़ना चाहता है, कामुक दृष्टि से अन्यों को देखता है, उनका दर्शन भी करता है, तो ये कितना खराब है, क्योंकि इससे हमारा चित्त खराब हो जाता है, हमारे अंदर भी भोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए, उनके बारे में बोलना नहीं चाहिए, उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उन्होंने पकाया हुआ भोजन खाना नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विषयीर अन्न खाइले दुष्ट है मन, कि जब विषयों का, ऐसे विषयी लोग भोगी लोगों का अन्न हम ग्रहण करते हैं तो मन दुष्ट हो जाता है, फिर हमारे भजन में एक बंधन हो जाता है। तो इस प्रकार से दुख में खेद में चेतावनी के रूप में यह हंत शब्द का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी सुख में भी प्रयोग किया जाता है। तो गोपियां इस श्लोक में दोनों भाव से इस शब्द का प्रयोग कर रही हैं। हंत आनंद इसलिए कि गोवर्धन कितने महान भक्त हैं, और दुख किसके लिए है? अपने आप के लिए, कि गोवर्धन तो इतने अच्छे भक्त हैं लेकिन हमारा तो ये भाग्य नहीं है, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, हम ऐसे भक्ति नहीं कर पा रहे हैं जैसे गोवर्धन भगवान का संग कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं इतने आदर्श तरीके से, हम तो नहीं कर सकते हैं। हमें तो श्री कृष्ण से दूर रहना पड़ता है, हम यहां हैं और श्री कृष्ण वहां जंगल में वृंदावन में, और साथ साथ सेवा का मौका भी हमको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से गोपियां जो हैं हंत हंत, तो थोड़ा बहुत दुख अपने हृदय का व्यक्त कर रहे हैं। हंतायम, हंत अयम, अयम मतलब निकट है, ये संस्कृत भाषा में अगर, या किसी भी भाषा में हम कोई किसी चीज को दिखाना चाहते हैं, तो अगर वो चीज करीब है तो हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, और अगर वो दूर है तो दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं ये करताल, इस करताल को मुझे दे दो, या उस करताल को मुझे दे दो जो वहां पर है, दूर है। तो इस और उस जैसे एषः बालकः संस्कृत में कहते हैं कि ये बालक, और अगर बालक दूर है कहते हैं सह बालकः, तो वो बालक। तो अयम शब्द का प्रयोग करने से ये हम जान सकते हैं कि गोवर्धन उनके बहुत नजदीक है, इसलिए वो कह रहे हैं अयम। लेकिन वास्तव में गोवर्धन नजदीक नहीं है, गोपियां तो वृंदावन में अपने घरों में बैठी हुई हैं, या अपने प्रांगण में, अपने गांव में एकत्र होकर छोटे छोटे गणों में बात कर रही हैं, और गोवर्धन तो काफी दूर है, कई मील दूर है। तो फिर गोपियां ऐसे क्यों बोल रही हैं कि अयम ये गोवर्धन जो कि यहां पास में है? क्योंकि अपने मन में वो गोवर्धन को देख रही हैं और वो सोच रही हैं कि गोवर्धन भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, भगवान कृष्ण के बहुत निकट हैं, बल्कि इस समय श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ में गोवर्धन के ऊपर चल रहे होंगे। तो क्योंकि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण के बहुत करीब है, शारीरिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, और हम हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं, तो हम भी गोवर्धन के करीब आ गए। सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि आध्यात्मिक जगत बड़ा अद्भुत है, तो जैसे ही गोपियां जो कि सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की, जैसे जैसे वो गोवर्धन के बारे में चर्चा करने लगी, स्तुति करने लगी गोवर्धन की, तो गोवर्धन उनके सामने आए दर्शन देने के लिए, बल्कि उनका दर्शन लेने के लिए। इस प्रकार से जब गोपियां भाव से गोवर्धन के समीप हैं, निकट हैं, तो ये अयम शब्द का प्रयोग करना गलत नहीं है। जैसे हम पर कल चर्चा कर रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन में जगह है और काल की सीमा नहीं होती है, भक्ति भाव से व्यक्ति इन दो चीजों को, बंधनों को, अड़चनों को पार कर सकता है। इसलिए गोपियां जब बात कर रही हैं तो मानो ऐसा उनको लग रहा है कि गोवर्धन बिल्कुल उनके सामने है, इसलिए वो कहते हैं अयम अद्रि, अद्रि मतलब पर्वत, जैसे नीलाचल को नीलाद्रि भी कहते हैं और शेषाद्रि, तिरुपति में तिरुमला को शेषाद्रि भी कहते हैं और जगन्नाथपुरी को नीलाद्रि भी कहते हैं, यहां भी पास में है नीलगिरी, वो अलग है, सह्याद्रि, यहां बेलगाम के पास हम तो सह्याद्रि में है ना, अद्रि। तो हंतायम अद्रिर, तो अद्रि मतलब गोवर्धन, गोवर्धन को संबोधन कर रहे हैं। और फिर कहते हैं अबला, एक गोपी अन्यों को कह रही है। वैसे बला मतलब बल, मतलब जिसका बहुत बलवान है, जो अबला मतलब स्त्री जो शारीरिक दृष्टि से थोड़ा बहुत कमजोर होती हैं, उनको अबला कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो अबला शब्द का प्रयोग यह इसलिए भी किया जा रहा है कि एक गोपी दूसरी गोपी को या अन्य गोपियों को संबोधित कर रही है, और क्योंकि स्त्रियां हैं तो इसलिए अबला कहती हैं। लेकिन एक दूसरे दृष्टि से वो इस कारण से भी दूसरे गोपियों को अबला कह रही हैं कि अपने आप को बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर समझ रही हैं, दुर्भाग्यशाली समझ रही हैं, कि वृंदावन में सारे पशु प्राणी भाग्यशाली हैं, जंगल में जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, बादल हैं, वृक्ष हैं, गोवर्धन सब कृष्ण का संग करते हैं, लेकिन हम दूर हैं, हम यहां गांव में हैं, कृष्ण का दर्शन केवल दो बार करते हैं दिन में, सुबह सुबह जब वो निकलते हैं और शाम को जब वो आते हैं, और वो भी चंद क्षणों के लिए। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा भाग्य उतना नहीं है, हम आध्यात्मिक दृष्टि से काफी कमजोर हैं, दुर्भाग्यशाली हैं। कृष्ण की शक्ति है और इसलिए वो वास्तव में सबला है, अबला नहीं है। ये गोपियां जो हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को अबला, कमजोर आध्यात्मिक दृष्टि से भी मान रही हैं और सोचती हैं कि वृंदावन में सभी कोई जो है उनसे ज्यादा भाग्यशाली है। हंतायम अद्रिर अबला, तो ये अद्रि क्या है? हरिदास वर्यो, हरि के दासों में से वर्य श्रेष्ठ है। हरिदास कौन है? जो हरि का सेवक है। दास कौन होता है? सेवा करना ये बहुत एक गहरा विषय है। हम अपने आप को भक्त कहते हैं, सेवक कहते हैं, दास कहते हैं, दीक्षा के बाद हम सबका नाम दास हो जाता है, कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, तो ऐसे दास शब्द आ जाते हैं। तो सेवा करना ये बहुत गुह्य चीज है। सेवक, वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि सेवा करने का मतलब है अपने प्रभु को प्रसन्न करना। अगर प्रभु या जिनकी सेवा, हमारे स्वामी जिनकी सेवा हम कर रहे हैं, वो प्रसन्न हुए, तो फिर कहा जा सकता है कि हम दास हैं, हम सेवक हैं। और इतना ही नहीं, और अगर वास्तव में हम सेवा कर रहे हैं और हमारे स्वामी को, प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं, तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो असली सेवक वो है, न केवल वो अपने स्वामी को प्रसन्न करता है, लेकिन ऐसे स्वामी के प्रसन्नता में प्रसन्नता को अनुभव करता है, और अपनी सेवा में ही आनंद को, सेवा को ही सब कुछ समझता है, अपने सेवा को ही आनंद समझता है। और इसलिए सेवक, से मतलब सेवा, वक, वक शब्द या बक, वक या बक एक पक्षी है, बक आपने देखा ना, एक असुर है कृष्ण लीला में, क्या नाम है, बकासुर, बक, उसने ऐसे एक बक का रूप लिया, बक या वक। और संस्कृत में बक का और एक अर्थ होता है जो ढोंगी है, जो टेढ़ा है, थोड़ा कपटी आदमी है। तो अगर हम सेवा करते हैं हमारे प्रभु का, और उस सेवा में हम आनंद नहीं ले रहे हैं, हम उसको बोझ समझ रहे हैं कि अरे कहाँ फंस गए, एक यहाँ कितना बोझ है, कब ये खत्म हो जाएगा, कब हम मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे इस सेवा से, तो फिर वो वकवृत्ति हो जाती है, बकवृत्ति, तो वो हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि ये बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की सेवा कर रहा है, अपने आप को भक्त मान रहा है, तो उसे भगवान की सेवा में बिल्कुल प्रसन्न होना चाहिए। और गोवर्धन जो है बड़े प्रसन्न है, इसलिए उनको हरिदास वर्य कहते हैं। ये प्रश्न दिया पूछा जा सकता है कि गोवर्धन लीला में सारा ब्रज जो है वो गोवर्धन के नीचे आ गया, एक छत्री के समान गोवर्धन ने सबको आश्रय दिया, सारे ब्रजवासी आए, गाय, गौएं, बछड़े, गोप, गोपियां, सारे पशु सब उसके नीचे, उनके नीचे आ गए। तो गोवर्धन तो व्रज का एक अंश है, तो सारा व्रज भला गोवर्धन के नीचे कैसे आ सका, ये कैसे संभव है? तो इसके लिए वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का स्पर्श किया अपनी छोटी उंगली से, तो उस स्पर्श से बड़े हर्षित हो गए गोवर्धन, इतने हर्षित हो गए, और उस दिव्य हर्ष में उनके शरीर का विस्तार हो गया और इतना बड़ा हुआ कि उसके नीचे सारा व्रज भूमि आ सका। और इस प्रकार से उन्होंने सारे ब्रजवासियों की सेवा की बड़े आनंद से। उनकी सेवा क्या थी? सारे ब्रजवासियों को आश्रय देना, और इस आश्रय देने के कार्य में उनको कई कठिनाइयां हुई। उस समय इंद्रदेव ने अपने संवर्तक बादलों के द्वारा भीषण वर्षा बरसाई वृंदावन के ऊपर, ऐसी वर्षा जो कि सृष्टि के प्रलय के समय दिखाई पड़ती है, साथ साथ जो बर्फ के टुकड़े भी, बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे, और ऐसे तेज पवन चल रहा था, तूफान, ठंडी, और साथ साथ इंद्रदेव जब आए उन्होंने अपने वज्र को भी फेंका। वैसे वज्र जो होते हैं उससे पर्वत भी टूट सकते हैं, इंद्र कभी कभी इसका वज्र का प्रयोग इसके लिए करते हैं, पर्वतों को तोड़ने के लिए। परंतु गोवर्धन के ऊपर ये सब, जब सारे कष्ट आए, तथा कथित कष्ट, तो गोवर्धन को कष्ट नहीं हुआ वास्तव में, गोवर्धन बड़े आनंद की अवस्था में थे, प्रफुल्लित थे, क्योंकि न केवल भगवान के उंगली का स्पर्श हो रहा था, बल्कि वो भगवान की सेवा कर रहे थे, उनके भक्तों को आश्रय देकर। और भगवान स्वयं को आश्रय देकर भगवान की इच्छा को पूर्ण करके, और वो जान रहे थे कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए गोवर्धन इतने प्रसन्न थे अपनी सेवा में। तो इसलिए ऐसे अवस्था में वो वर्य है, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए गोपियां कह रही हैं कि हरिदास वर्य गोवर्धन है, क्योंकि भगवान की सेवा में वो पूरी तरह से आनंद लेते हैं। तो हमें भी सीखना चाहिए गोवर्धन से कि कैसे भगवान की सेवा करते करते हम भी प्रसन्न हमेशा रहें। कभी भी भारी हृदय से, दुखी मन से हमें भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए, या शिकायत की भावना से हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए हर छोटी सेवा के लिए। भगवान के लिए अगर हमने छोटी सी भी सेवा की तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि वास्तव में हमारे जीवन में इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। हम केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, और वो भी इस एक जन्म को जो कि 50, 60, 70, 80 साल का है, लेकिन भगवान की एक छोटी सी सेवा करने से इसके ऊपर हमारे आध्यात्मिक जीवन में कितना असर पड़ेगा ये हमारे कल्पना के बाहर है। छोटी सी सेवा करने से अब हम मुक्ति के पथ में आए, हम प्रवेश कर गए हैं, और ये एक सेवा हमें आगे चल के दूसरी सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा, ये दूसरी सेवा तीसरी सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा, और सेवा की पूंजी जब बढ़ती जाएगी तो वो सुकृति भी बढ़ती जाएगी, सुकृति बढ़ते बढ़ते सेवा की वृत्ति बढ़ती जाएगी, और इस प्रकार से हम भक्तों का संग प्राप्त करेंगे, और इस प्रकार से तेजी से भगवत भक्ति और भगवान के धाम में जाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, ताकि हमेशा इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर हम भगवान के सानिध्य में दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। तो अगर हमें सेवा मिल जाए और सेवा हम अच्छी भावना से न करें, और हमेशा गुर 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 करते हुए कह रहे कब खत्म हो जाएगा, क्यों हमको ये मिला है, हम आराम से सेवा कर सकते थे लेकिन ये भारी सेवा हमको क्यों मिला है, शायद हम दूसरी सेवा करते जो हल्का है, इससे हमको कष्ट होता है, नींद आ रही है फिर भी हमको करना पड़ता है, हम जप में बैठे हैं लेकिन अभी सो जाते तो अच्छा होता। तो कभी कभी सेवा करते समय कई विचार आ सकते हैं मन में, लेकिन हमको इस समय गोवर्धन का स्मरण करना चाहिए। कैसे गोवर्धन को इतने कष्ट हुए कृष्ण की सेवा करते हुए बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो, परंतु गोवर्धन ने कभी शिकायत नहीं की कि अब भगवान कृष्ण इतने सारे पर्वत पड़े हैं केवल मुझे क्यों चुना, अभी देखो इंद्र क्या कर रहा है, इंद्र वज्र छोड़ रहा है, इतनी बारिश ठंडी, अभी अन्य तो हिमालय है, इतना बड़ा पर्वत है, हिमालय को चुन लिया होता, सह्याद्री को चुन लिया होता, नहीं कभी कंप्लेंट लॉन्च नहीं किया उन्होंने, जाके कंप्लेंट बुक में जाकर लिखा नहीं भगवान कृष्ण के कि दूसरों को भी कभी कभी चुना कीजिए, केवल मैं ही क्यों सेवा के लिए। तो कभी कभी भक्तों के मन में वैसे विचार आ सकता है, कठिन सेवा है सब, कठिन सेवा के लिए मुझे क्यों, अन्यों को क्यों नहीं, देखो वो अन्य भक्त है वो उतनी अच्छी तरह से सेवा नहीं करता है, वो आधा सेवा करके चले जाता है तो मैं क्यों करूं। हम में से हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी सेवा के लिए उत्तर देना है मृत्यु के समय। हम में से जो हृदय से करेंगे, गोवर्धन की भावना से सेवा करेंगे, हम सीधे भगवान के धाम में चले जाएंगे। जो लोग सेवा अच्छी तरह से नहीं करेंगे उनको उतना ज्यादा समय यहां भौतिक जगत में बिताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से गोवर्धन से प्रेरणा प्राप्त करके हमें बहुत आभारी होना चाहिए, इसलिए गोपियां हरिदास वर्य कह रही है। सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का कारण ये एक है, और दूसरा कारण भी ये है कि गोवर्धन अपना सर्वस्व श्री कृष्ण की सेवा के लिए अर्पण कर रहे हैं। सेवा कई तरह से की जा सकती है, कोई अपना स्थान या समाज में कोई प्रतिष्ठा है इत्यादि, इसका उपयोग कर सकता है भगवान की सेवा में, कोई अपने धन से कर सकता है, कोई अपने बुद्धि से, कोई अपने वचन से, कोई अपने शारीरिक श्रम से, कोई अपने मन से, तरह तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने वचनों से भगवान की सेवा करता है लेकिन अपने हृदय से नहीं करता, अपनी आत्मा से नहीं करता, तो उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। तो जितना ज्यादा समर्पित भाव से अपना सर्वस्व भगवान के चरण कमलों में समर्पण करके कोई व्यक्ति सेवा करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ सेवा माना जाता है। अब गोवर्धन ने अपना सारा शरीर भगवान के सेवा के लिए अर्पण किया है, सब कुछ। अगर हम इधर उधर जा रहे होते हैं, कोई हमको टकराता है तो हम कहते अरे क्यों भाई, क्या क्यों दिखते नहीं हो, क्या सीधे चलो, क्यों टक्कर मारते हो। तो गोवर्धन ऐसे नहीं बोल रहे हैं। कीर्तन के समय हमको कितना तकलीफ होता है, इतने भक्त ले साथ में है, कोई टक्कर मारते हैं, कुछ क्या होता है, कोई हमारे पैरों के ऊपर उनका पैर रख देते हैं, हमको कष्ट होता है। लेकिन गोवर्धन शिकायत नहीं करते हैं। गोवर्धन के ऊपर न केवल कृष्ण है, सारे ग्वाल बाल हैं, गाय हैं, सब भ्रमण करते रहते हैं। गोवर्धन कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं। इसलिए हम जान सकते हैं कि गोवर्धन कितने श्रेष्ठ हैं। वैसे वृंदावन के भक्तों में से भी कई श्रेणियां हैं। शांत रस के भक्त, उनके ऊपर हैं दास्य रस के भक्त, फिर सख्य रस के भक्त, वात्सल्य रस के भक्त और माधुर्य रस के भक्त जो गोपियां हैं। हर एक स्तर में जैसे 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 हम आगे बढ़ते हम देखते हैं कि समर्पण की भावना, अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करने की भावना और तीव्र होती जाती है। वात्सल्य प्रेम में भी माता यशोदा आनंद महाराज अपना सब कुछ देना चाहती हैं, लेकिन ये सब कुछ देने की भावना गोपियों में, अपने ये भावना शिखर पे पहुंचती है गोपियों में, क्योंकि गोपियां अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। यहां तक कि अपने समाज में जो उनका मान है वो भी वो त्यागने के लिए तैयार है। साधारणतः जो महिलाएं होती हैं उनको अपना नाम जो है समाज में ठीक होना चाहिए, इसकी बहुत परवाह रहती है और ये स्वाभाविक है। लेकिन गोपियों की इस बात की परवाह भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे पतियों को छोड़कर हम जंगल में बीच रात में भाग के चले गए। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बोलने दो। तो इसलिए गोपियों का जो प्रेम है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति वो है जो कि गोपियों ने करके दिखाया है। तो ये दूसरा कारण है जिससे हम कह सकते हैं कि गोवर्धन जो है वो हरिदासों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। तीसरा कारण जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि न केवल गोवर्धन अपना सर्वस्व श्री कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित करते हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्तों के लिए भी उतनी ही तीव्रता से समर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ में उनके भक्त होते हैं। और वृंदावन में जब भ्रमण करने के लिए श्री कृष्ण निकल आते तो उनके साथ में उनके ग्वाल बाल मित्र होते, गाय और उनके बछड़े। तो गोवर्धन ने इन सब की सेवा की उसी भाव से जैसे कि उन्होंने कृष्ण के से किया, दासानुदास के रूप में। इसलिए बताया जाता है शास्त्रों में कि वैष्णवों का दास बनना यह वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आदि पुराण में अर्जुन से कहते हैं ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्ता ते मद भक्ता तमामता। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, ये मे भक्त जना जो मेरे भक्त हैं, डायरेक्ट मेरे भक्त हैं, न मे भक्ताश्च ते जना, जो अपने आप को मेरा भक्त समझते हैं, न मे भक्त, वो मेरे भक्त नहीं है वास्तव में। तो ये एक विचित्र बात लगती है। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, मतलब क्या है ये, कुछ विचित्र बात लगती है। भगवान कहना चाहते हैं जो अपने आप को डायरेक्ट मेरा भक्त समझते हैं वो मेरे भक्त नहीं है। तो मेरे भक्त कौन है, मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता है। तो मेरे भक्तों के जो भक्त हैं ते में भक्त तमामता है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, डायरेक्ट मेरी जो भक्ति करते हैं मेरे भक्त नहीं, ऐसा नहीं, परंतु भक्त तमा है, श्रेष्ठ भक्त कौन है जो कि मत भक्ता नाम च ये भक्ता है, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। तरतम्य न्याय, तरतम्य मतलब अच्छा, और भी अच्छा, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, जो डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं वो भक्त है। लेकिन भक्त तरह और भक्त तमह, भक्त तम वो है जो कि भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति डायरेक्ट नहीं की जाती, मेरे भक्तों के माध्यम से की जाती है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी भाव को सिखलाया है, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखल परमानंद पूर्णामृताब्धेह गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना हम विप्रह, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, न अहम वर्णी, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं, न गृहपति, मैं गृहस्थ भी नहीं हूं, न वनस्थो, न वानप्रस्थि हूं, न यति, न सन्यासी हूं, मैं कौन हूं? गोपी भर्तु, गोपी भर्तु मतलब गोपियों के स्वामी कृष्ण, गोपी भर्तु दास दासानुदास है, मैं कृष्ण भगवान के दासों का दास हूं। तीन बार दास शब्द का प्रयोग करते हैं, दास दासानुदास। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण प्रोद्यन, हमेशा उज्जवल रहते हैं, निखिल पूर्ण अमृत अब्धे, सारे ब्रह्मांड में वो दिव्य आनंद फैलाते हैं, दिव्य आनंद के सागर हैं कृष्ण। तो ऐसे दिव्य सागर, मूर्तिमान दिव्य सागर के दासों का दास मैं हूं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी ये भावना का अनुशीलन करने का प्रयत्न करना चाहिए। दासानुदास का मतलब न केवल हम महान भक्तों की सेवा करते हैं, वो तो करना ही चाहिए, न केवल हम वरिष्ठ भक्तों की सेवा करते हैं, करना ही चाहिए, परंतु साधारण से साधारण भक्तों की भी सेवा करते हैं। भक्तों में भेद करना चाहिए अवश्य, अगर कोई नौसुखिया है और कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है तो उनके प्रति व्यवहार हमारा बाहरी रूप से अलग होना चाहिए, ये तो है, परंतु सेवा भावना सबके प्रति रहनी चाहिए। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए चलो अभी हम वरिष्ठ बन गए, अभी अन्यों को हमारी सेवा करनी चाहिए, अब सेवा करने का समय अभी हो गया, अभी हम नए भक्त से के श्रेणी से हम गुजर चुके, अभी तो हम नौसुखिया नहीं है, अभी हम वरिष्ठ भक्त बन गए, तो अभी अन्यों को हमारी सेवा करनी चाहिए और हम अब सेवा केवल स्वीकार करेंगे, नहीं। हर अवस्था में जो सच्चा भक्त होता है वो अपने आप को सेवकों का सेवक ही समझता है, दासानुदास ही समझता है, नए भक्तों की भी सेवा वो उतने ही उत्साह से करता है। हाँ, सेवा करने की पद्धति अलग हो सकती है, जैसे अगर कोई नया भक्त आता है उसे कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, किसी वरिष्ठ भक्त से पूछता है तो वरिष्ठ भक्त का कर्तव्य होता है कि बड़े प्रेम से उसको समझाए, अनुकंपा, ये प्रेम की भावना हमेशा रहनी चाहिए। और जब समझाते समय क्या भावना होनी चाहिए उस वरिष्ठ भक्त की, ये भावना नहीं होनी चाहिए कि इसको भक्त को कुछ नहीं मालूम, मुझे ज्यादा मालूम है, नहीं। और नहीं ये भावना होनी चाहिए कि मैं कितना अच्छा भक्त हूं कि मैं सबको समझा सकता हूं, नहीं। ये भावना होनी चाहिए कि कृष्ण भगवान ने मुझे ये स्थिति में डाला है कि मैं इस भक्त की सेवा करूं उसे कृष्ण कथा सुनाकर, मैं इस भक्त का सेवक हूं, भगवान ने मुझे ये मौका दिया है कुछ दो शब्द मेरे मुख से कहने के लिए, क्योंकि भगवान को मालूम है कि अगर मैं ऐसे सेवा में न रहूं तो मेरा पतन हो जाएगा। भगवान कितने कृपालु हैं कि मुझे वह ऐसे सेवा करने की संधि दे रहे हैं। वास्तव में ये जो व्यक्ति है ये मेरा स्वामी है, ये मेरा प्रभु है। हाँ, वास्तव में सही है। देखिए, अब इस मंदिर में हम आते हैं, कोई थोड़े साल पहले आते, कई जन्मों से भक्ति करते हुए आया है वो यहां राधा गोकुलानंद मंदिर में, और हम ये नहीं जान सकते कि ये भक्त वास्तव में कौन है, पिछले जन्म में क्या था और आगे चल के क्या बनेगा। हो सकता है भगवान के धाम में वो हमारे से पहले चले जाए, हालांकि हम अपने आप को वरिष्ठ मानते हैं तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए हरेक भक्त को हमें विशेष ही मानकर चलना चाहिए, वही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे स्वामी हैं। इसलिए भक्त जो है अपने आप को हमेशा दास कहता है और अन्यों को प्रभु, अपने आप को कभी प्रभु नहीं कहना चाहिए। अगर हमारा नाम है कृष्णदास, हम अगर दूसरे का नाम है जगन्नाथ दास, तो हम दूसरों के बुलाएंगे, हम कहेंगे जगन्नाथ प्रभु। लेकिन अपनों के अपने आप को जब हमारा नाम जब कहेंगे तो कृष्ण प्रभु नहीं कहेंगे, हम कृष्णदास कहेंगे, अन्यों को प्रभु, अपने आप को दास। तो गोवर्धन से हमें सीखना चाहिए। कृष्ण बुक में, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम किताब में प्रभुपाद लिखते हैं कि गोवर्धन इस रहस्य को जानते थे कि भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है। कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो उनके भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए, उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। इस तरह से गोवर्धन हरिदास वर्य है, यह तीसरा कारण है। और कैसे वो भक्तों की सेवा करते थे? सह गो गणयोस्तयोर्यत, न केवल गायों के लेकिन उनके ग्वाल बाल मित्रों की भी सेवा करते थे, और सेवा करके उनको सम्मान देते थे। सम्मान देने का क्या मतलब है? सम्मान देने का मतलब है सेवा करना। सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति सेवा की संस्कृति है। सारे ब्रह्मांड में हर एक वर्ग की सेवा हमें करनी चाहिए। ये ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है, सेवा हमें अतिथियों की करनी चाहिए जो हमारे घर में आएंगे, पशु प्राणी की सेवा करनी चाहिए लेकिन घर में आकर नहीं। कुत्तों बिल्लियों को हमें घर में नहीं रखना चाहिए, बाहर होकर उनको थोड़ा बड़ा भोजन दे दें ठीक है, उनका रक्षण करें, उनकी हत्या नहीं करें, यह उनकी सेवा है। वृक्षों की, फूल पौधों की सेवा हम करें, कृष्ण की सेवा हम उनका इस्तेमाल करके फूल पौधों को, फूलों को, फलों को हम कृष्ण को अर्पण करें, उनको काटे नहीं, नष्ट नहीं करें उनको। ऐसे हर एक चीज की हमें सेवा करनी चाहिए। तो यहां पर गोवर्धन सिखला रहे हैं कि गायों की और ग्वाल बालों की सेवा कैसे, उन सम्मान कैसे दिया, सेवा करके। मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत, और इस प्रकार से प्रमोदः, ऐसे सेवा करते करते वो हमेशा हर्षित रहते थे, आनंद में रहते थे। और विशेष उनके आनंद का कारण क्या है? यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। इसी प्रकार से राम कृष्ण बलराम और कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श उनके सर से हुआ, इसलिए प्रमोदः। मोद मतलब आनंद, प्रमोद मतलब प्रकृष्ट रूपेण मोदः इति प्रमोद। तो अति तीव्रता से जब आनंद आता है तो उसको प्रमोद कहते हैं। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरण कमल उनके शरीर से गुजर रहे हैं इसलिए उनको बड़ा आनंद हो रहा है। और ऐसे आनंद में, हर्षित अवस्था में, न केवल कृष्ण की लेकिन उनके भक्तों की भी सेवा वो कर रहे हैं। और कैसे सेवा कर रहे हैं? पानीय सुयवस कंदर कंद मूलई ही, पानीय जल, उनको जल प्रदान करते हैं। किस माध्यम से? निर्झर झरने कई हैं गोवर्धन में। आज जो हम गोवर्धन हमारी भौतिक आंखों से देखते हैं, वैसे 5000 साल पूर्व गोवर्धन नहीं था, गोवर्धन काफी बड़ा था, छोटा छोटा होते आया है। और वैसे भी आज कलयुग में वो दृष्टि हमारी नहीं रही वास्तविक गोवर्धन को देखने के लिए। तो गोवर्धन का दृश्य बड़ा सुंदर हुआ करता था, इतने सारे निर्झर जो कि शीतल जल केवल पान के लिए नहीं लेकिन अपने उनके कर कमलों को और चरणों को भी धोने के लिए और प्रक्षलन करने के लिए भी ये जल इस्तेमाल किया जाता था। और सुयवस, सुयवस मतलब दूर्वा घास, और गायों को खाने के लिए बहुत मुलायम और स्वादिष्ट घास। कंदर गुफाएं, गुफाओं के भीतर जाकर कभी कभी कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ लीला करते थे, और विशेष करके जब गोपियों के साथ लीला होते थे तो कभी कभी इन गुफाओं के अंदर भी लीलाएं होती थी। कंद मूलई ही, वहां पे स्वादिष्ट खाने के लिए कंद मूल फल इत्यादि सब होते। जब ये थक जाते कृष्ण बलराम और उनके ग्वाल बाल मित्र, तो क्या करते? ठंडा शीतल जल पान करते, फिर आराम से उस शैया पे, घास के शैया पे लेट जाते जो कि बहुत मुलायम था, और साथ साथ में कभी कंदरों में चले जाते जहाँ की ठंडी में गर्मी थी, गर्मी में ठंडी, अंदर जाके आराम से विश्राम करते कभी कभी। और फिर कंद मूल ही, भूख लग जाती तो फल खाते, कंद मूल खाते जो कि बहुत स्वादिष्ट है। इस प्रकार से गोवर्धन ने कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा की। वैसे श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में कई भगवान के दासों का या भक्तों का वर्णन है। अनगिनत भक्त हैं भगवान कृष्ण के। कोई नाम बता सकते हैं आप भगवान के भक्तों के, हरिदासों के? हरिदास, प्रहलाद और ध्रुव महाराज और नारद मुनि, व्यासदेव, कितने ऐसे भक्त हैं, अनगिनत भक्त हैं। लेकिन इन सारे हरिदासों में से तीन भक्तों को विशेष करके हरिदास कह के संबोधित किया गया है श्रीमद् भागवत में। हालांकि सब हरिदास हैं क्योंकि वो भक्त हैं, परंतु इस विशेष करके इन तीन भक्तों को ऐसे बतलाया गया है। और ये तीन भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज, उद्धव और अब यहां पर दशम स्कंद में गोवर्धन। वैसे तीनों का वर्णन दशम स्कंद में ही आता है। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए और उनके इच्छा के अनुसार राजसूय यज्ञ संपन्न किया, तो वहां पर जगह जगह से, जगह जगह मतलब न केवल पृथ्वी लोक लेकिन सारे ब्रह्मांड के जगह जगह से कई अतिथि आए। पृथ्वी लोक से कोने कोने से राजा आए, राजकुमार आए, ऋषि मुनिगण आए, उनके रिश्तेदार आए, नागरिक आए जो अलग अलग वर्णों के थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, सब आए इस राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए। ऊपर के लोकों के ऋषि मुनि भी आए, न केवल पृथ्वी के लेकिन महरलोक, जनलोक इत्यादि, स्वर्गलोक, देवी देवता आए जो अलग अलग ग्रहों के, लोकों के जो अधिष्ठाता देव हैं वो भी सब आए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो आए ही, वो तो थे ही। और जब ये राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ तो उस समय सुखदेव गोस्वामी जो हैं, जो राजसूय यज्ञ के समाप्त होने के बाद जो अवस्था हुई, जब सारे अतिथिगण अति प्रसन्न होकर अपने अपने निवास स्थान में वापस चले जा रहे थे, तो वो युधिष्ठिर महाराज का गुणगान करते करते जा रहे थे। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये दृश्य का वर्णन किया। हरिदासस्य राजर्षे राजसूय महोदयम् नैवातृप्यन् प्रशंसन्तः पिबन् मर्त्यो मृतम् यथा। युधिष्ठिर महाराज को राज ऋषि कहते हैं। राजर्षे राजा भी हैं, ऋषि भी हैं, साथ साथ में हरिदासस्य की हरिदास के संबंध में राजसूय महोदयम्, महा उदयम, एक विशाल अनुष्ठान हुआ। उसका नाम था राजसूय, जो कि युधिष्ठिर महाराज राज ऋषि हरिदास युधिष्ठिर के लिए संपन्न किया गया। और जो वहां लोग आए थे न एव अतृप्यन, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए क्या सुनकर क्या देखकर, प्रशंसंतः युधिष्ठिर महाराज का गुणगान करके, इस राजसूय यज्ञ का गुणगान करके वो इतने प्रभावित हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने भाव विभोर हो गए वहां पर आकर कि वो युधिष्ठिर महाराज की स्तुति करते रहे करते रहे, तृप्त नहीं हुए। कैसे तृप्त नहीं हुए? जिस तरह पिबम मर्त्यो मृतम यथा। मर्त्य मतलब इस मर्त्यलोक के रहने वाले लोग, साधारण आदमी अमृत, जब साधारण आदमी अमृत का पान करता है तो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसके मन में ये इच्छा रहती है कि हम पीते रहें पीते रहें पीते रहें, संतुष्ट नहीं होता। ठीक उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज जो कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और जैसे कृष्ण कथा अमृत है, कृष्ण के भक्तों की कथा भी अमृत है, तो ये सारे ऋषि मुनि राजा इत्यादि आकर युधिष्ठिर महाराज का गुणगान करते और सुनते बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते। तो यहां पर उनको हरिदास कह के संबोधित किया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने उन सबका स्वागत किया और वो कहने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आप सब ऋषि मुनि इत्यादि मेरे निवास स्थान में पधारे हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। वास्तव में आप सब इस सारे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, संत हैं, और कृष्ण भगवान स्वयं आपका संग चाहते हैं, आपको मिलने के लिए, देखने के लिए यहां पर आए हैं। तो नारद मुनि ने कहा, युधिष्ठिर महाराज, ऐसा नहीं है। वास्तव में आपका भाग्य हम सब ऋषि मुनियों से कोटि कोटि गुना ज्यादा है। क्यों? वास्तव में कृष्ण भगवान, जो कि अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में साक्षी के रूप में विराजे हैं, वो आपके घर में आज आए हैं और निवास कर रहे हैं, आपके सेवक, आपके मित्र और आपके प्रभु के रूप में। और वास्तव में देखिए, आपकी सेवा, आपकी प्रतिनिधित्व करते हुए वो सारे ऋषि मुनियों के चरण धो रहे हैं। ये कौन करता है वास्तव में? अब देखिए, कोई शादी का उत्सव है, अब शादी के समय जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों का की शादी मनाते हैं, तो अकेले कितना कर सकते हैं वो? तो उनके साथ में सब कुछ संभालने के लिए उनके मित्र आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, और उनके ओर से वो कई जिम्मेदारियां संभालते हैं। तो वर वधु के माता पिता एक को कहते हैं, ठीक है, आप जो है वो प्रसाद की व्यवस्था संभाल लेना, देखना कि सबको पेट भर खिलाना चाहिए। कोई कहेगा, देखो आप फूल वाले की देखभाल करना, आप अतिथियों का सम्मान करना, जो भी आएंगे अच्छी तरह से उनका देखभाल करना। तो अगर कोई किसी शादी में, किसी अनुष्ठान में सारे अतिथियों का स्वागत कर रहा है या कोई ऐसे विशेष सेवा कर रहा है, तो हमें जानना चाहिए कि वो बहुत करीब है उस व्यक्ति से जो कि ये शादी मना रहा है। तो श्री कृष्ण सारे ऋषि मुनियों को, राजाओं का स्वागत कर रहे थे, और जो भी आते थे उनको स्वयं अपने कर कमलों से उनके चरण धोते थे। मतलब इतनी साधारण से साधारण सेवा वो करते थे। कृष्ण भगवान ने ये नहीं सोचा, रे मैं तो भगवान हूं, मैं ये सब साधारण सेवा करूंगा, ये तो सब मेरे भक्त हैं, उनको मेरी सेवा करनी चाहिए। नहीं, जितना आनंद भक्तों को आता है भगवान की सेवा करने में, उससे कहीं ज्यादा आनंद भगवान को आता है उनकी भक्तों की सेवा करने में। तो बड़े खुशी से भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मैं युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों का दास हूं और उनके आदेश का पालन करूंगा और सारे अतिथियों की सेवा करूंगा, और ये सारे अतिथि भी मेरे भक्त हैं, तो इनकी भी सेवा करने का मौका मिल जाएगा, डबल फायदा हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज के घर में श्री कृष्ण ऐसे निवास कर रहे थे, इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण, जो कि सारे मनुष्य समाज के लिए जीवन के उद्देश्य हैं, वो विरला ही दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े योगी हैं, ध्यान में, तपस्या में स्थित होते हैं कई सालों तक, कई जन्मों तक, और फिर भी बहुत कठिनाई से उनको भगवान कृष्ण का दर्शन होता है। परंतु यही कृष्ण यहां पर आपके सेवक के रूप में निवास कर रहे हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, ये जान लो कि हम केवल कृष्ण का दर्शन यहां करने को नहीं आए हैं, हम सब यहां इस राजसूय यज्ञ को देखने के लिए आए हैं और आपको देखने के लिए आए हैं। क्यों? हम ये देखने के लिए आए हैं कि किस तरह से कृष्ण आपके सेवक बन गए हैं और आपने किस प्रकार से कृष्ण को जीत लिया है, जो कि अजित हैं, जो कि कभी जीते नहीं जाते। ये चीज को हम देखने के लिए यहां पर आए हैं। किस तरह से आप कृष्ण को प्रसन्न कर पाए हैं, वो हम सब सीखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि भाव विभोर हो गए, रोने लग गए कि देखो आप युधिष्ठिर महाराज, आप कितने महान भक्त हैं। जाते जाते अन्य ऋषि मुनि भी इसी प्रकार से भाव विभोर हो गए। वास्तव में महाभारत पढ़ के साधारणतः लोग पांडवों को केवल कृष्ण के भाई समझते हैं, मित्र समझते हैं, भक्त भी समझते हैं, परंतु ये कितने महान हैं नहीं जानते हैं। क्योंकि कृष्ण कितने महीने उनके साथ में रहे, क्या नहीं किया भगवान कृष्ण ने उनके लिए। और जो लोग पांडवों को भक्त मानते हैं, ज्यादातर केवल अर्जुन के बारे में ही जानते हैं। वो तो है ही, अर्जुन तो भक्त सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन युधिष्ठिर महाराज, वो तो हरिदास कह के नारद मुनि कह रहे हैं आप इतने भाग्यशाली हैं युधिष्ठिर। और स्वयं युधिष्ठिर भी कृष्ण की इतनी सेवा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बड़े भाई थे वास्तव में कृष्ण के। कृष्ण उनको नमस्कार करते थे और फिर युधिष्ठिर महाराज उनको आलिंगन करते थे। लेकिन जो अन्य थे, उनके कुटुंब के सदस्य, वो कृष्ण की सेवा कर रहे थे, फिर भी युधिष्ठिर महाराज को ये श्रेय मिल गया। तो युधिष्ठिर महाराज कितने महान भक्त होंगे कल्पना कीजिए। युधिष्ठिर को दुनिया ने पहचाना नहीं है, ये जितने भी निकट के भक्त हैं भगवान कृष्ण के, युधिष्ठिर महाराज आदि, ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं। जहां भी भगवान जाते हैं इस भौतिक जगत में, अवतीर्ण होते हैं जगह जगह पर अलग अलग ब्रह्मांडों में, युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त हमेशा उनके संग में रहते हैं और अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। इससे भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आनंद आता है अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने में। तो इस प्रकार से यहां युधिष्ठिर महाराज को हरिदास बताया गया है। और दूसरे हरिदास हैं उद्धव। उद्धव जैसा कि आप जानते हैं वो श्री कृष्ण की तरह ही दिखते हैं, श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, द्वारका में उनकी सेवा करते हैं सख्य रस में, बहुत निकट हैं। यदुओं में से सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं उद्धव, और कहा जाता है कि उनके शरीर की कांति सब कुछ बिल्कुल कृष्ण की तरह है, यहां तक कि उनके कपड़े गहने आदि वो भी कृष्ण का महाप्रसाद है। कृष्ण उनको प्रसन्न होकर देते थे तो कृष्ण के ही महाप्रसाद पहनते थे। जब कृष्ण भगवान को खबर पहुंची द्वारका में कि ब्रजवासी जो है विरह की भावना में बहुत दुखी हैं, तो उन्होंने उद्धव को आगे भेजा। खुद क्यों नहीं गए भगवान कृष्ण, कोई बता सकते हैं आप? जब भगवान को पता चला कि ब्रजवासी मेरे विरह में बहुत तड़प रहे हैं, तो उन्होंने उनको सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा, अपने आप नहीं गए। क्या कारण हो सकता है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उद्धव को और उद्धव के माध्यम से अन्यों को दिखलाना चाहते थे कि देखो सच्ची भक्ति, उद्धव की भी सच्ची भक्ति थी लेकिन तरतम्य, श्रेष्ठ में से और भी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ से और सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या चीज है, कि वृंदावन के निवासी जो भक्ति करते हैं वो अतुलनीय है, और इस ब्रज भक्ति में भी गोपियों की जो भक्ति है इसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। और कृष्ण ने सोचा होगा, शायद उद्धव के मन में थोड़ा कुछ विचार आ गया होगा कि मैं कितनी अच्छी सेवा करता हूं कृष्ण की, तो उत्तम भक्ति क्या है वो दिखलाने के लिए उद्धव को, उन्होंने उद्धव को भेजा वहां पर, ताकि उद्धव देख सके। और वास्तव में उद्धव बहुत प्रभावित हुए। दूसरा कारण था कि वो सारे विश्व को भगवान श्री कृष्ण प्रदर्शित करके दिखाना चाहते थे कि वास्तव में विप्रलंब सेवा ये क्या चीज है, विरह में कैसे गोपियां और अन्य ब्रजवासी भगवान से प्रेम करते थे, कितनी तीव्र उनकी भावना थी कि विरह में उनकी क्या दशा हो गई। इस भाव को सारे दुनिया को दिखाने के लिए वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा। और एक तीसरा कारण है, और वो है श्रीमती राधा रानी का भाव। जब श्री कृष्ण जब राधा रानी श्री कृष्ण के संग में रहती थी तो उनके मन में हमेशा भाव रहता था कि श्री कृष्ण चले गए, चले गए, चले गए। एक बार एक भंवरा आया और भंवरा श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का स्पर्श करना चाहता था, और वो तंग कर रहा था श्री कृष्ण राधा रानी को, तो राधा रानी उसको बहुत दूर हटाने की कोशिश कर रही थी। आखिर श्री कृष्ण उठे और उन्होंने उसको दूर कर दिया और कहा कि मधुसूदन चला गया आखिर में, मधुसूदन मतलब वो भंवरा। लेकिन राधा रानी ने सोचा मधुसूदन मतलब कृष्ण, और बेहोश होकर गिर पड़े। तो कृष्ण सोच रहे थे जब मैं राधा रानी के साथ में होता हूं तो मेरा विरह का अनुभव करती है, और जब मैं दूर रहता हूं तो तमाल वृक्ष जिसका रंग श्री कृष्ण के समान है उसको आलिंगन करती है, सोचती ये कृष्ण है, तो मेरे विरह में मेरी उपस्थिति को देखती है और उसमें खुश रहती है, तो ये अच्छा है कि मैं दूर ही रहूं, ताकि विरह में जो प्रेम है और जो सुख मिलता है वो बहुत अधिक है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया आगे, उद्धव चले गए। जब पहले ब्रजवासियों ने उद्धव को देखा तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण ही आए हैं, परंतु जब उद्धव पास में आ गए तो देखा अरे ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण के जैसे दिखते हैं लेकिन ये तो उद्धव है, कपड़े भी वैसे, दिखने में वैसे, चिन्ह सब कुछ वैसे ही। उद्धव ने उनका भाव देखा, उनके संग कई महीने रहे, और क्योंकि उद्धव भी वास्तव में शुद्ध भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं भगवान के, तो वो दिन रात कृष्ण कथा करते और उस कृष्ण कथा के अमृत का पान करते करते ब्रजवासियों को लगा कि जितने महीने उद्धव वृंदावन में रहे थे वो केवल एक क्षण के बराबर है। जब किसी चीज में हमको बहुत रुचि होती है तो उस समय हमें लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अच्छा कोई सिनेमा देख रहा है और सिनेमा खत्म, अरे खत्म हो गया सिनेमा, क्योंकि वो उसमें इतनी रुचि है, उसको सोचता है कि सिनेमा बंद ही ना हो, चलता रहे, ये भौतिक रस है। उसी प्रकार से वृंदावन के निवासी हैं, उनको कृष्ण कथा में इतनी रुचि है, महीने बीत गए हैं लेकिन उनको लगता है कि अरे एक क्षण बीत गया, उद्धव और बोलो बोलते जाओ। जैसे यहां युधिष्ठिर महाराज के संबंध में बताया जा रहा था, नैवा तृप्तिन प्रशंसंत कि कभी तृप्त नहीं होते थे, उसी प्रकार से ब्रजवासी भी उद्धव की कथा सुन के तृप्त नहीं होते थे। और इस प्रकार से उद्धव उनके साथ में रहे और शुकदेव गोस्वामी फिर वर्णन करते हैं उद्धव के बारे में और उनको हरिदास कह के संबोधित करते हैं।
सरिद्वन गिरी द्रोणी वीक्षण कुसुमितान द्रुमान कृष्णम संस्मारयन रे मे हरिदासो व्रजौ कसाम।
हरिदास उद्धव जब वृंदावन में थे तो उन्होंने देखा, क्या देखा, सरित जो नदियां हैं, वन मतलब जो वन है, गिरी जो पर्वत हैं, द्रोणीर मतलब जो वैलीज हैं, जो पर्वतों के बीच में जो स्थान होता है, वीक्षण इन सबको देखा उन्होंने, कुसुमितान द्रुमान, द्रुमा मतलब वृक्ष, कुसुमिता मतलब फलों से फूलों से भरे हुए थे, तो इस सारे सौंदर्य को देखा उन्होंने वृंदावन के। और साथ साथ कृष्णम संस्मारयन रे मे व्रज औकसाम, ओकसाम मतलब रहने वाले, व्रज के निवासियों को उन्होंने बार बार कृष्ण का स्मरण दिलाया कृष्ण कथा करके, और इस प्रकार से अमृत की वर्षा उनके कानों के माध्यम से बरसाई उनके हृदय के भीतर। तो ऐसे उद्धव को शुकदेव गोस्वामी हरिदास कहते हैं। तो ये दूसरे हरिदास हैं श्रीमद् भागवत के, लेकिन इन सारे हरिदासों में से तीन श्रेष्ठ, दो श्रेष्ठ माने जाते हैं, दो हरिदास श्रेष्ठ जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में है, और इनमें से गोवर्धन है युधिष्ठिर और उद्धव से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये वास्तव में गोपियों का मत है। वैसे तो गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन गोपियां गोवर्धन को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ मान रही हैं। उद्धव और युधिष्ठिर से श्रेष्ठ तो मान ही रहे हैं, लेकिन अपने आप से भी ज्यादा श्रेष्ठ मान रही हैं। क्यों? राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, स्वयं उन्होंने अपना सर्वस्व उनकी सेवा के लिए प्रदान किया हुआ है, और इसलिए क्योंकि उन्होंने सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा, उनके भक्तों की सेवा के लिए दिया हुआ है, गोपियां भी उनकी स्तुति कर रही हैं और वो कह रही हैं कि प्रमोद होकर आनंदित होकर उनके अष्ट सात्विक विकार जो हैं वो प्रकट हो रहे हैं। और ये कौन से अष्ट सात्विक विकार हैं, किस तरह से एक पर्वत जो है इन अष्ट सात्विक विकारों को प्रकट कर सकता है, ये हम कल चल के देखेंगे कि कैसे उनके अलग अलग उनके आंसू क्या हैं, उनके रोमांच खड़े होने का मतलब क्या है, और किस तरह से भगवान की सेवा गोवर्धन ऐसे कर रहे थे। गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिराज पर्वत महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न
ऐसा भी सुनने को मिला है जैसे भगवान जो उद्धव को भेजते हैं वृंदावन में जब द्वारका में होते हैं कि जाकर देखो, तो ये जो दो तीन कारण आपने बताया, थोड़ा ये भी सुनने को मिला है कि उद्धव हमेशा कहते थे कि आप जब भी देखो गोपियों को याद करते हैं, उनके हृदय में जो है आप विचलित होते हैं, दुखी होते हैं, तो भगवान उनको ये कारण जानने के लिए भेजते हैं कि देखो गोपियां मेरे हृदय में कैसे कितने दुखी हैं, कितनी व्यथित है। क्या ये भी सही है?
हाँ, बात तो वही है, एक ही बात है कि उद्धव को दिखलाना चाहते थे कि देखो गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम कितना ऊंचा है, क्या भाव है उनका, इस भाव को वो दिखलाना चाहते थे और इसकी घोषणा सारे जगत में करवाना चाहते थे उद्धव के माध्यम से, इसलिए उन्होंने उद्धव को भेजा वहां पर। और कोई प्रश्न किसी के? माइक यहाँ। हरे कृष्ण।
हाँ प्रभु जी, हरिदास भी है और हरिभक्त भी है, क्या उसमें कोई अंतर है? कारण के हरिभक्तों में हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ऐसे बहुत से भक्त हैं, जैसे नारद मुनि हैं, तो उनको श्रेष्ठ न कहते हैं, हम हरिदास वर्य गोवर्धन जी को कहते हैं, इसमें क्या फर्क है?
यही बात है कि जैसे प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान के भक्त अनेक हैं इतिहास में भी और जिनका शास्त्रों में वर्णन है, परंतु श्रीमद् भागवत में विशेष करके हरिदास कह के संबोधित केवल युधिष्ठिर महाराज, उद्धव और गोवर्धन को किया हुआ है, क्योंकि उनकी समर्पण की भावना, उनकी निकटता इतनी थी। जैसे हमने कहा कि नारद भी युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि हम भी भक्त हैं, ठीक है, लेकिन आपकी तरह भक्त नहीं है, क्योंकि हमको, हम तो भगवान का दर्शन करने आते हैं, लेकिन भगवान आपके पास में रह रहे हैं एक मित्र बन के, इतने निकटता से, तो आप श्रेष्ठ भक्त हैं, तो इसलिए नारद से श्रेष्ठ हैं युधिष्ठिर आदि, और युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ हैं उद्धव, जो कि द्वारका में रह के और भी निकट रहते हैं श्री कृष्ण से। और गोपियां कहती हैं कि इन दोनों से श्रेष्ठ हैं गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन ने अपना सब कुछ अर्पण किया है, अपना शरीर, उनके शरीर के ऊपर ही सब चलते हैं, ऐसा ऐसी कोई सेवा नहीं है जो गोवर्धन नहीं करते हैं भगवान के लिए और उनके भक्तों के लिए, इसलिए गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है हरिदास वर्य, ये तात्पर्य है।
उससे हम प्रश्न का ही विस्तार रूप बताते हैं, उनको फिर हरिदास की उपमा कैसे दे दी?
गोवर्धन भगवान के अवतार भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। जब गोवर्धन की पूजा समाप्त हो गई और बहुत सारा भोग उनके सामने रखा हुआ था, गोवर्धन के सामने कृष्ण के आदेश के अनुसार, तो गोवर्धन ने एक विशाल रूप धारण किया ये दिखाने के लिए कि मैं भी कृष्ण से अभिन्न हूं, और उन्होंने इस विशाल रूप धारण करके उस सारे भोग को ग्रहण कर लिया। पर्वत के समान वहां भोग रखे गए थे, तरह तरह के व्यंजन, अनेक तरह के व्यंजन, और गोवर्धन ने एक क्षण में सब कुछ समाप्त कर लिया। और फिर उन्होंने और सारे व्यंजन रखे जितने भी गांव में था, सब चावल, दाल, रोटियां, सब्जियां, मिठाइयां, दूध, फल सब लाया, फिर भी उन्होंने समाप्त कर लिया। और हर बार कहने लगे, अणियोर अणियोर, और चाहिए और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो सारे ब्रजवासी इधर उधर भाग दौड़ करके जो भी होता था वो लाए, सब अर्पण किए। तो उस समय गोवर्धन ने ये दिखाया कि मैं भी कृष्ण से अभिन्न हूं, परंतु जिस भाव में वो कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा करते हैं वो भाव उनके हरिदास का भाव है, भक्त का भाव है। इसलिए भक्तों के लिए, हालांकि हम गोवर्धन को कृष्ण के रूप में मानते हैं, हम गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं हैं, कभी अपने पैर नहीं रखते गोवर्धन के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं जाते थे गोवर्धन पर्वत के ऊपर, तो हम मानते हैं गोवर्धन को कृष्ण के रूप में, परंतु हमारा भाव है कि गोवर्धन भक्त है, हमारे लिए वो एक आदर्श है, उनकी सेवा हमारे लिए अनुसरणीय है, जैसे उन्होंने सेवा की है कृष्ण और भक्तों की, हमें सीखना चाहिए उनकी सेवा से। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने विशेष करके कदम नहीं रखे ऊपर, परंतु गोवर्धन को महान भक्त भी मानते थे उसी भाव में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भाव श्रीमती राधा रानी का भाव है, और श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियां यहां पर इसी श्लोक में उसी भाव को व्यक्त कर रही हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, तो हमें भी इसी भाव का अनुशीलन करने का प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि गोवर्धन भगवान हैं, भगवान के रूप हैं, परंतु इसको ध्यान में रखते हुए भी हमें उनको प्राधान्य जो है वो भाव का वो भक्त के रूप में देना चाहिए। विशेष करके गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में इसको महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये गोपियों का भाव है, वृंदावन के निवासियों का भाव है, और वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों में चलना ये हमारा उद्देश्य है। है कि वास्तव में यह सत्य है कि जब अन्य भक्त प्रगति कर रहे होते हैं भक्ति में, तो हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, इस बात को हमें प्रसन्नता होनी चाहिए इस बात में। लेकिन कभी कभी हमारे बद्ध अवस्था के कारण या अन्य कारणों से हमें ईर्ष्या होने लगती है मन में उनके प्रति, तो कैसे इससे हम मुक्त हो सकते हैं? और अगर क्षमा याचना करने के लिए भी जाएंगे तो अहंकार जो है वो भी बीच में आता है। भक्तों के संग में रहकर अवश्य ऐसे होने वाला है, जहां भी व्यक्ति एक साथ में आते हैं ऐसी चीजें अवश्य होती हैं, क्योंकि हम सब भक्ति करने के लिए आए हैं। तो आखिर वैकुंठ से सीधे अब इस जन्म में नहीं आए, भौतिक जगत से आए हैं और बहुत भारी बोझा लेकर आए हैं। क्या बोझा? हमारे बक्सा पेटी सब लेकर आए हैं? नहीं, इन अनर्थों को लेकर आए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि। इनमें से खतरनाक है मत्सर, बहुत सूक्ष्म है ये ईर्ष्या, तो ये भी हमारे साथ है, बहुत भारी वजन है इसका, और इसको निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जब हम देखते हैं कि ईर्ष्या का बीज हमारे हृदय में उग रहा है, तो उसी समय उसको जला देना चाहिए, उसको काट देना चाहिए उस पौधे को, और उसी भक्त की स्तुति देख करनी चाहिए हमको, और उस भक्त के अच्छे गुण जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ईर्ष्या का शमन करना है, दमन करना है, तो भक्ति हरिनाम लेने से तो होगा ही, परंतु साथ साथ ईर्ष्या का फल है निंदा। ईर्ष्या जब आगे बढ़ती है तो निंदा, जब हम किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं इसका मतलब है हम उसकी ईर्ष्या करते हैं। तो अगर ईर्ष्या से मुक्त होना है तो निंदा से जो विपरीत है वो हमें करना है। क्या है निंदा के विपरीत? उसकी स्तुति करना है। लेकिन स्तुति कैसे करना है? केवल कृत्रिम रूप से नहीं, हृदय से करने का प्रयास करना चाहिए। उस भक्त के अंदर जो अच्छे गुण हैं उनको समझने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसे करके ये वृत्ति, इस मनोवृत्ति का अनुशीलन करके हम इस ईर्ष्या के भावना को इससे दूर हो सकते हैं। साथ साथ हम भगवान की चरणों में प्रार्थना भी कर सकते हैं कि ये सब अनर्थ हमारे हृदय में हैं, इनको कृपया आप नष्ट कर दीजिए। कई बार बहुत सी सेवाएं एक बार होने के कारण सेवा की भावना स्थिर नहीं रहती, तो क्या करें? जब शिकायत की भावना उत्पन्न होती है तो क्या करें? हाँ, भक्ति करते करते एक साथ अनेक सेवाएं आ सकती हैं, लेकिन यह केवल हमारी समस्या नहीं है, माता यशोदा को भी ऐसे हुआ था, याद है आपको? और एक बार उन्होंने भगवान को नाराज भी किया था ऐसे। कब? जब वो कृष्ण को दूध पिला रही थी, तो साथ साथ उन्होंने चूल्हे के ऊपर दूध गर्म करने के लिए भी रखा था। उन्होंने देखा कि दूध उबल के ऊपर आया है, तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण को नीचे रख दिया और दूध के पीछे चूल्हे पर गई। अब कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया, अरे हमको छोड़ के चले गए ऐसे नीचे, हमको भूख लगी है, भूख अभी तक मिटी नहीं है, मिट नहीं गया। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने अपने गुस्से में क्या कर दिया, थोड़े जो दूध के मटके वगैरह दही है उनको सब फोड़ डाला। उधर माता यशोदा ने ठीक जो चूल्हे के ऊपर जो करना था सो कर दिया, वापस आके देखा कि सब जगह तहस नहस हो गया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि इस समय यशोदा माता के सामने दो सेवाएं थी, एक तो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को दूध पिला रही थी। अब हम सोच सकते हैं कि इससे श्रेष्ठ सेवा क्या हो सकती है, कि अन्य हर चीज को है जो दूसरे नंबर पर आना चाहिए। लेकिन उधर जो दूध उन्होंने उबालने के लिए रखा था वो किसके लिए था? वो भी कृष्ण के लिए था, और सर्वश्रेष्ठ दूध वो लेती थी सर्वश्रेष्ठ गायों से, जो कि सर्वश्रेष्ठ घास से के ऊपर चरे हुए हैं। तो ऐसे दूध वो उबाल रहे थे ताकि कृष्ण के लिए अलग अलग तरह के पदार्थ बना सकें। तो माता यशोदा में ने अपने भक्ति भाव में ये ठीक समझा कि इस समय वो जरूरी है कृष्ण की सेवा के लिए, तो कृष्ण को छोड़ दिया और वहां चली गई। कृष्ण को गुस्सा आया तो इसका मतलब है कि कृष्ण नाराज हो गए और माता यशोदा ने भक्ति नहीं की, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना यह भक्ति है, हम चर्चा कर रहे थे ना, और कृष्ण को नाराज करना यह भक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि यशोदा माता ने जो किया वो भक्ति नहीं है, उन्होंने कृष्ण को नाराज किया। बराबर है ना, बराबर है कि नहीं है? नहीं है बराबर। कैसे बराबर है? हालांकि उन्होंने माता कृष्ण को नाराज किया, लेकिन उनका भाव अनुकूल था, कृष्ण की सेवा के लिए था, इसलिए कृष्ण प्रसन्न हुए, वास्तव में नाराज नहीं हुए। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल भारी रूप से नाराज करना प्रसन्न करने की बात नहीं है, हृदय से हमारी भावना क्या है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, अनुकूल भावना होनी चाहिए। केवल बाहरी रूप से उनकी प्रशंसा करना ये ठीक नहीं, दुर्योधन ने भी किया। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए हस्तिनापुर में, तो दुर्योधन ने बहुत दावत वगैरह की व्यवस्था की, वो थोड़ा प्रलोभन देना चाहते थे कृष्ण को, अपने पक्ष में लेना चाहते थे, और कृष्ण ने जान लिया अंतर्यामी है वो, और उन्होंने ठुकरा दिया दुर्योधन के प्रस्ताव को और गए विदुर के घर में, जिनका घर के साधारण था, और उनके साथ उन्होंने प्रसाद लिया। तो यहां दुर्योधन बड़े प्रेम से बात कर रहे थे, अच्छी तरह से स्वागत किया, परंतु कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए अंदर से। लेकिन माता यशोदा की डांट से जब उन्होंने उनको नीचे रख दिया तो प्रसन्न हुए भगवान। बाहरी रूप से कृष्ण क्रोधित हुए, लेकिन क्योंकि माता यशोदा की भावना बिल्कुल भक्तिमय थी, उच्चतम भक्ति से भरा हुआ था उनका हृदय, इसलिए जो भी ऐसे शुद्ध भक्त करते हैं वो प्रेम ही है, वो भक्ति ही है, इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारी भावना सही है, अगर हमारा हृदय भक्ति से भरा हुआ है और भावना अनुकूल है, और ऐसे शुद्ध बुद्धि से हम विचार करते हैं कि इस समय भगवान कृष्ण की और उनकी भक्तों की सेवा करने के लिए उचित क्या सेवा है, क्योंकि एक समय पर हम एक ही चीज कर सकते हैं, सामने हमारे चार सेवाएं हैं, तो हमें इस समय पर क्या करना चाहिए, कौन सी सेवा करनी चाहिए, क्या उचित होगा हमारे लिए, इसके लिए आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए और भक्ति चाहिए। भक्ति से फिर हमें अंदर से ही भगवान प्रेरणा देते हैं कि ठीक है ये इस समय जरूरी है, और उस समय वो थोड़ा समय के लिए रख देना। और अगर हमारे लिए कोई ऐसे भ्रम हो जाता है, कोई भ्रांति हो जाती है, तो अन्य भक्तों की सलाह ले सकते हैं इसके बारे में कि प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि भक्त जो हैं वो सेवा के नाम पे जप श्रवण कीर्तन इत्यादि को कम महत्व देते हैं, अन्य सेवाओं में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि यही जो है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, मूल सेवा तो ये है। अन्य सेवाओं का भी महत्व है, अवश्य उनको भी करना चाहिए, लेकिन जब अपने समय में जब ठीक ढंग से होना है, जब कीर्तन होता है कीर्तन में शामिल होना है, और फिर बाद में अन्य सेवाएं भी हम कर सकते हैं। उधर अगर कोई महत्वपूर्ण सेवा है तो उसको भी नहीं टालना चाहिए, हमारा जप हुआ नहीं हमको करना है। जब कोई महत्वपूर्ण सेवा है तो जप को भी छोड़ के जाना है, और साथ साथ ये भी देखना है कि जप के ऊपर हमारी लापरवाही ना हो। तो ये कैसे इन चीजों का संतुलन करना है, ये अगर हम हृदय से सिंसियर रहेंगे तो भगवान हमें वो सद्बुद्धि दे देंगे, जिससे कि हमारे जीवन का टाइम टेबल इत्यादि हम अच्छी तरह से बना सकें। ठीक है,
मंदिर में क्या
जाते, हम बाहर रह के विरह हमको नहीं होता है, भगवान का विरह नहीं होता बाहर रह के हमको। बाहर रह के हम तो दुनिया का संग करते हैं, भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं। ये ब्रजवासियों की बात है, शुद्ध भक्तों की बात है, जो कि कृष्ण के दिव्य सानिध्य से दूर होकर भी उनके उपस्थिति को अनुभव करती हैं। लेकिन हमारी वो दशा नहीं है, हम केवल भक्तों के संग में ही भगवान का अनुभव कर सकते हैं, और संग में आते आते भी कितना कठिन है। हम जब कथा में बैठे हुए रहते हैं, हम कीर्तन में रहते हैं, फिर भी मन भटक जाता है ना। हम में से हर एक को अभी विचार करना चाहिए एक क्षण के लिए कि अभी आप यहाँ 8 बजे से प्रवचन चालू हुआ, तो इन 2 घंटों में कितनी बार हमारा मन भटक गया बाहर, अन्य विचार आए, इधर उधर की बातें मन में आई, कितनी बार आए होंगे। तो जब भक्तों के बीच में रहते हैं, कृष्ण कथा सुन रहे होते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह के सामने होते हैं, फिर भी मन भटक जाता है, तो बाहर रहकर फिर अवश्य मन दूर चले जाएगा भगवान कृष्ण से। साना हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है, इसलिए वो हमें करना है। मैनेजमेंट जो है या अर्थव्यवस्था, मतलब आप मंदिर की बात कर रहे हैं शायद, आप मंदिर में या हमारे जो संस्था की मैनेजमेंट है उसके बारे में शायद प्रश्न है, कि या ऐसे जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, वो दर्शन या फिलॉसफी के ऊपर आधारित होना चाहिए, जैसे कि त्रिनादपि सुनिचे न, या तो फिर अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसका खंडन करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए, जो भी कुछ है, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है इसलिए फिलॉसफी के ऊपर ही आधारित होना चाहिए। चाहे मैनेजमेंट में कोई ऐसा निर्णय लिया जाए या वैसा निर्णय लिया जाए, लेकिन दोनों निर्णय फिलॉसफी के ऊपर ही, उसकी बुनियाद के ऊपर आधारित होने चाहिए। त्रिनादपि सुनिचेन है, परंतु सुनिचेन त्रिनादपि, इसका मतलब क्या है, यह अलग अलग परिस्थितियों में समझा जा सकता है, इसलिए इसके लिए थोड़ी परिपक्वता चाहिए, एक आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, जिससे हम समझ सकें कि कृष्ण की सेवा के लिए अर्थ जो व्यवस्था है, व्यवस्थापन है, उसको कैसे संभालना चाहिए, किस परिस्थिति में हमें कठोर बनना चाहिए, किस परिस्थिति में हमें कोमल बनना चाहिए, यह भी जानने के लिए भगवान हमें बुद्धि देंगे। लेकिन भावना सही होनी चाहिए। अगर हमारी भक्ति भावना सही रही और हमने अगर प्रभुपाद की किताब अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो फिर हमारा मैनेजमेंट सब ठीक ठाक चलेगा। फिर सही भक्ति भावना से चाहे किसी को डांटना पड़े, किसी को आलिंगन करना पड़े, दोनों सही है, एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है।
गोपिया है तो सबसे श्रेष्ठ भगवान जब धाम सुधाम जाने गए, तो उस समय भक्ति का ज्ञान उद्धव को दिया, तो हम जान सकते हैं कि उद्धव सबसे श्रेष्ठ भक्त है, अन्य भक्तों को दिया नहीं।
उद्धव को क्या ज्ञान दिया, वृंदावन का
भक्ति का सबसे ज्ञान, भक्ति का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान।
हाँ अवश्य, इसलिए तो उद्धव भी बहुत श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं, परंतु जैसे तरतम्य न्याय है ना, अच्छा और भी अच्छा और भी अच्छा और भी अच्छे, तो ऐसे तुलना में, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रजवासी जो हैं और विशेष करके गोपी उद्धव से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। वृंदावन के निवासियों को भक्ति के ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको तो केवल, उनके मन में केवल प्रेम ही था और फिलॉसफी जानने की भी जरूरत नहीं थी उनको, जो दर्शन है फिलॉसफी के परिपूर्णता को प्राप्त कर चुके थे, वो उत्तम शिखर तक पहुंच गए थे।